खूबसूरत जोहरफ, जोहरफ का मानी होता है बनाओ, डेकोरेशन, कोटिंग, सोने को भी कहते हैं। इसमें ख्वातीन से मुतल्लिक कुछ आयात आ रही हैं, क्योंकि सोने के लफ्ज़ के साथ ही ख्वातीन आ जाती हैं। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, वल किताबिल मुबीन। कसम है इस वाज़ेह किताब की कि हमने इसे अरबी जुबान का कुरान बनाया ताकि तुम लोग इसे समझो, और हकीकत में उम्मुल किताब में सब्त है, हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब। दूसरी सूरत है जिसमें कुरान के अरबी में होने का जिक्र है। शायद अल्लाह ताला हमें दोबारा अपनी नियतों को रिवाइज करने का मौका दे रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को अरबी में सीखने वाला बना दे। अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये दरस नसीहत तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम हद से गुजरे हुए हो? नोट कीजिए, अल्लाह ताला हिदायत का सिलसिला मौकूफ़ नहीं करते। कोई सुने या ना सुने, माने ना माने, अल्लाह ताला अपना काम करते हैं। पहले गुजरी हुई कौमों में भी बारहा हमने नबी भेजे, कभी ऐसा ना हुआ कि कोई नबी इनके यहाँ आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। फिर जो लोग इनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर थे, इन्हें हमने हलाक कर दिया। पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी हैं। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि ज़मीनों आसमान को किसने पैदा किया, तो वो खुद कहेंगे कि इन्हें इसी ज़बरदस्त अलीम हस्ती ने पैदा किया, वही ना जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद की राह को पा सको, जिसने एक ख़ास मकदार में आसमान से पानी उतारा और इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को जिला उठाया। इसी तरह एक रोज़ तुम ज़मीन से बरामद किए जाओगे, वही जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए कश्तियाँ और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम इनकी पुश्त पर चढ़ो, और जब इन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो, सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। ये दुआ सब मिलके पढ़ें ज़रा, सुभानल्लज़ी, सबको आती है। एहसान याद करो और कहो कि पाक है वो जिसने हमारे लिए इन चीज़ों को मुसख़्खर कर दिया, वरना हम इन्हें काबू में लाने की ताकत न रखते थे, और एक रोज़ हमें अपने रब की तरफ पलटना है। देखिए ये कितनी खूबसूरत दुआ है। जब भी आप सवारी पे बैठें ये पढ़ा करें। कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं शौर के साथ? जो नहीं पढ़ते वो बड़े बहादुर हैं, क्योंकि हम नहीं जानते। नहीं, बहादुर इसलिए कि कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी हमें होगी। आज से नियत करें, देख के पढ़ें। आप देखिए कि हम मौत और ज़िंदगी के बीच में होते हैं। एक गलत क्लिक हमारी जान ले सकता है। दूसरी बात, इससे क्या पता चलती है कि बड़ी गाड़ियों में बैठना, जहाज़ों में बैठना, शिप पे बैठना दीनदार होने के ख़िलाफ़ नहीं है। मुझे मुस्लिम एयरलाइंस में ट्रैवल करते वक्त जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है कि उनमें से अक्सर शुरू में ये दुआ प्ले करते हैं, और जो ज़मीनों आसमान के बीच में उड़ते हुए ये दुआ पढ़ते हुए फीलिंग होती है वो यहाँ बैठ के नहीं होती। अल्लाह ताला आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करवाते हैं। मेरे तो साथ कभी को बैठी हूँ ना नॉन मुस्लिम, तो मैं खुद भी पढ़ती हूँ ना, तो मेरे पास ऐप या बुक में होती है तो मैं उनको भी देती हूँ, क्या कहकर, इट विल सिक्योर यू। अच्छा पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लो, क्या बड़ी बात है। हमें अल्लाह की हर जगह ज़रूरत है, लेकिन सफ़र में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप देखिए कि यहाँ से कॉन्फिडेंस भी दिखता है कि एक दीनदार है। इमेजिन कीजिए बहुत बड़ी गाड़ी मर्सिडीज़, उसमें से एक सिस्टर निकली, खूब इस्लाम के मुताबिक अपने हाल हुलिये को बनाए हुए, और ज़ुबान पे दुआ है सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना। इसको कहते हैं नूरुन अला नूर, कॉन्फिडेंस। एक मुस्लिम मर्द और औरत का कॉन्फिडेंस। एक आधी वीडियो में मुझे याद आ रहा है कि एक इमाम है, गालिबन मिशारी राशिद हैं, तो ये कुवैत में एक मस्जिद के इमाम है। इत्तफाक है मुझे मस्जिद देखने का भी मौका मिला, तो वहाँ से वो एक उनकी वीडियो में एक क्लिप आता है कि वो बड़ी सी लंबी सी गाड़ी है, वो पार्क करते हैं मस्जिद के पार्किंग लॉट में, और उधर लिखा होता है रिजर्व फॉर इमाम, जैसे जो भी लफ्ज़ होते हैं ना, वो अपनी गाड़ी वहाँ करते हैं, फिर बड़े आराम से उठ के अंदर मस्जिद में जा करते नमाज़ पढ़ाते हैं। ये कॉम्बिनेशन चाहिए आज। हमारे इमाम अच्छी गाड़ियों में से निकले, क्यों हम चाहते हैं कि बाबा जी पुरानी गाड़ी में से निकल कर नमाज़ पढ़ाने आए? ये सोच आएगी तो दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा। दीन और दुनिया साथ साथ। कभी टूटी गाड़ी में भी बैठना पड़े तो बैठ जाएं, रिक्शे पे बैठिए, पैदल बैठिए, लोकल बस पे बैठिए, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये सोच लेना कि बड़ी गाड़ियाँ या सवारियाँ और ये चीज़ें शायद दीन के ख़िलाफ़ हैं, ऐसा नहीं है। आप जिस दुनिया में आज जी रहे हैं, इधर आपको इस्लाम का एक स्टैंडर्ड, एक दर्जा रेज करके देना पड़ेगा, अल्लाह की हदों में रहते हुए। दीन का जितना खूबसूरत इजहार करके लोगों को देंगे, इंशाल्लाह लोगों के दिलों में इस्लाम की मरूबियत आएगी। आपने कभी पुराने दौर की मस्जिदें देखी हैं? आपको स्पेन जाने का इत्तेफाक हुआ, इस्तंबुल जाने का इत्तेफाक हुआ, और कुछ नहीं तो लाहौर में बादशाही मस्जिद तो देखी होगी ना। दिल पे कुछ कैफियत नहीं आती आजकल नमाज में? जब भी किसी मस्जिद में जाऊँ, और बड़ी बड़ी मस्जिदें, तो दिल में एकदम रोब आता है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह इस्लाम का रोब दे। तो याद रखिए कि अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी जगह, अच्छे तरीके से मुसलमानों का दीन नेकी का काम करते देकर दूसरों के दिलों में रोब आता है। ये तो एक बहुत ढीलापन है अपनी बेतरतीबी को हम कह दें ये दीन के नाम पे, इस्लाम ने आपको मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर फरमाया ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी इन लोगों ने इसके बंदों में से बाज़ को बाज़ का जुज़ बना डाला। हकीकत यह कि इंसान खुला एहसान फरामोश है, यानी इतनी कुदरत वाले को छोड़कर दूसरों के पीछे भागता है। कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियां इंतखाब की और तुम्हें बेटों से नवाजा, और हाल यह है कि जिस औलाद को ये उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, इसकी विलादत की खबर जब खुद इनमें से किसी को दी जाती है तो इसके मुंह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाता है। यानी बेटी की पैदाइश की खबर से चेहरे पर स्याही आती है। सूरत नाहल में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाई ली जाती है और बहस व हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाज़े भी नहीं करती। ये देखिए कि यहाँ इस आयत में असल में सूरत ज़ुहरफ की वजह तस्मिया भी इधर सी समझ आती है। मुशरिकीन मक्का औरतों को, फीमेल्स को अल्लाह की बेटियां कहते थे नौजबिला, फरिश्तों की तरफ मंसूब करके। उसी तनाजर में यहाँ अल्लाह ने औरत का तस्करा किया और साथ ही कह दिया कि वो जेवर पहनती है। क्या जेवर पहनना बेवकूफ़ी की अलामत है? याद रखिए ये भी कोई पिछली सदी का ही तोहफा है। जब औरत और मर्द को एक किया, लड़की लड़के की एक दौड़ हुई, कपड़े उनके ठीक किया, वो ऐसे कपड़ों के साथ तो जेवरत पहन नहीं सकती थी, तो एक कॉम्प्लेक्स दे दिया। अनपढ़ जाहिल गंवार औरतें जेवर पहनती हैं और लड़की को लड़का बनाकर पेश कर दिया। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत है, एक मौका था हज़रत उसामा जो जैद के बेटे थे और अल्लाह के नबी उनसे बहुत ही मोहब्बत करते थे, तो वो खेलते खेलते जब गिरे तो वो रो रहे थे, तो अल्लाह के नबी उनको उठा के बहला रहे हैं जैसे बच्चों को आप भी बहलाते हैं। उसामा लड़की होता तो हम इसको अच्छे कपड़े पहनाते, उसामा लड़की होता तो हम इसको अच्छे जेवर पहनाते। अब अल्लाह के नबी ये बात कह रहे हैं। आज ज़रा से इस जुमले पर और इस हदीस पर अमल करते हुए हम अपनी छोटी बच्चियों का हाल हुलिया देख लें, नहीं समझे? देखिए हमेशा से बच्चियां फ्रॉक्स में होती थी, लॉन्ग मैक्सीज में होती थी, ढीले ढाले परियां लगती थी उड़ती भी। अब हम छोटी सी बच्चियों को क्या वो एक छोटी सी एक बोतल बना देते हैं? अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है, आप उसको लड़कियों वाले कपड़े पहनाएं। आप अपनी बच्ची को सितारों वाले, मोतियों वाले, प्रिंटेड, जो दिल करता है बनाए। ईद आ रही है, आप ईद पे उनके अच्छे से कपड़े बनाएं, लेकिन आम दिनों में भी उसको ऐसे कपड़ों में बनाएं कि उसकी निस्वानियत रहे। आप देखिए कपड़ों से बहुत फर्क पड़ता है, चाल बदल जाती है। आप टाइट कपड़े पहनाएं, पैंट शर्ट होती है, बेचारे कोशिश के बावजूद भी झुक नहीं सकते। तो जितना ढीला रिलैक्स लिबास होगा उतना अच्छा होगा, और बच्चियों के ये छोटे छोटे शौक पूरे करने चाहिए, इसी से निस्वानियत आती है। आप याद करें आप जब छोटी होती थी तो आप ईद की तैयारियां क्या करती हो, छोटा सा पर्स लेकर टुक 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 और अड्डी नहीं हड्डी वाला जूता पहनना है, कितना रोना आता था, रो रो के हड्डी वाला जूता लेना है। आज की बच्चियों को तो हम बेचारियों ने इन चीज़ों से महरूम कर दिया। तो शौक पूरे करें, लेकिन इस तरह नहीं कि वो चीज़ें बोझ बन जाए। अब यही है कि जी मैचिंग जूता नहीं इसलिए कहीं जाना ही नहीं है, ये भी नहीं करना। लेकिन बहरहाल यहाँ बात क्या समझ आई? दूसरी बात, लोग इस पे बड़ा बहस करते हैं, देखो औरतों के बारे में अल्लाह ने कहा है कि ये झगड़े में अपनी बात ठीक नहीं बताती, यानी रो रो के नाक ही बहती रहती है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताती। तो ये तो खूबी की बात है कि अल्लाह ताला इस जुमले में ये लिखते हैं, वो औरत जो बहुत खूब बड़बड़ के आगे से जवाब देती है। नहीं, औरत की खूबी उसके ऊपर जज्बात गालिब होते हैं, बात बाद में करती हैं, आंसू पहले निकल जाते हैं। दो आंसू निकले साथ नाक भी बहना शुरू हो गया, आवाज़ भी रुंधगी। मियाँ कहते हैं पहले रो लो फिर बात करना। तो आप देखिए ये तो भूल पाना है औरतों का। बहरहाल अल्लाह ताला हमें सीधी समझ दे। वजालुल मलाइकत अल्लज़ीनहुम इबादुर रहमानी इनासा, उन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के खास बंदे हैं औरतें करार दे लिया। نعوذ باللہ، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یعنی اپنے شرک کا ذمہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سنت اپنی ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ بن دیکھے بن سوچے اندھی تقلید کرنے کی بات ہے اس میں۔ فرمایا اور اگر ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں۔ اس پہ رکیے، کئی لوگ آج بھی آبا پرستی کے نام پہ ایسے ہی کام کرتے ہیں، تو کیا یہ نسل در نسل چیز چلے گی؟ نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے بڑوں کی اچھی باتوں کو رواج دیں۔ ہمارے بڑوں میں کتنی خوبیاں تھیں، شرم تھی، حیا تھی، مہمان نوازی تھی، کیئرنگ تھے، یہ کیجیے، ان کی روحوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ لیکن ان کے نام پہ ان کی نہ سمجھی، نہیں پتا تھا ان کو، کوئی کام کرتے تھے اور اب صرف یہ سوچ کے کرتے رہے کہ یہ ابا کی نشانی اور یہ اما کی وصیت، دادی اور یہ ساس کی بات ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب کتاب زندگی میں کھلتی ہے تو بہت ساری من گھڑت چیزیں زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ فرمایا خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہم اس کے کافر ہیں۔ کتنی جرت کی بات ہے، آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، دیکھیے پھر ابراہیم کا تذکرہ آیا، مگر کہاں؟ خاندان اور برادری کی رسم و رواج اور طور طریقوں کے خلاف چلنے والا بچہ ابراہیم، کیا کہا؟ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس جملے پہ آپ بھی کہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی جملے بولنے والا بنا دے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا۔ یہ میں کون ہے؟ بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے دیکھی، انہوں نے انکار مانگا، اللہ نے پھر ان کو انکار ہی دیا، پھر توفیق ہی نہیں دی۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی ان کو اپنا رسول ہی نہیں پسند آیا۔ اور کہتے تھے طائف کے کوئی بزرگ کو، بڑے لوگ، وہاں بہت امیر لوگ رہتے تھے، ان کے سرداروں میں سے کچھ، کہتے تھے ان پہ نازل ہوتا، یہ یتیم مکہ پہ اترا ہے، یہ کون سا کوئی اچھا کلام ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے کئی درجوں کے اعتبار سے فوقیت دی تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ ان آخری آیتوں سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ کو امیر کیا، کچھ کو غریب کیا، تاکہ نظام چلتے رہیں۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر سارے ہی امیر ہوتے تو چھوٹے چھوٹے کام کون کرتا؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اب اس مثال کو غور سے سنیے گا، واقعی اس کے اوپر میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیسے؟ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، یعنی کفر پہ، تو ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے ہیں۔ یعنی نان مسلم کا گھر سونے اور چاندی کا اور مسلمان کا گھر مٹی کا اور چونے کا، کتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے یہ ایمان کا۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ مٹی اور چونے کے گھروں پہ تو ہمارے ایمان بک جاتے ہیں، اگر سونے چاندی کے ہوتے تو پتہ نہیں اور کیا کچھ بک چکا ہوتا۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے۔ فرمایا یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے۔ دوبارہ پارے کے تھیم پہ آ جائیے، دنیا پانی کا قطرہ اور آخرت ایک سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، कभी भी नहीं खत्म होगी। फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद सोच के चुरचुरी आती है। और अच्छा काम हुआ ना तो पता भी नहीं चलेगा वक्का, बोर नहीं होगा कोई जन्नत में। इस दुनिया से दिल भरा आज तक इतने दुखों और सदमों के बावजूद, तो जन्नत से किसका दिल भरेगा। असल बात यह है कि हम जन्नत में पहुंच जाएं, और ये सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। जो शख्स रहमान के जिक्र से गफलत बरतता है, हम इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो इसका रफीक बन जाता है। ये शैतान ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तू तो बदतरीन साथी निकला। यहां से आपको शैतान की वफादारियां भी दिख रही हैं, किसी को नहीं छोड़ता। आप देखिए कि हमारी तो आंखें कान सब कुछ है ना, किसी के साथ बात हुई तो उन्होंने बताया कि बोल भी नहीं सकता कोई, हैंडीकैप है, चल भी नहीं सकता, लेकिन शैतान ऐसे गालिब है उस पर कि इस्लाम की बात सुनने को वो तैयार नहीं है शख्स। तो मैं कल से ये सोच रही थी कि अगर शैतान छोड़ता तो ऐसे बेचारे हैंडीकैप और गूंगे बहरे लोगों को छोड़ देता। मैंने कहा ये वक्त कैसे आ गया, कानों में लगा के सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। मैं कहा सुन सकते हैं तो कुरान सुनाइए। आप जरा नोट करें कि जब आप जिक्र, और जिक्र कुरान है और जिक्र अल्लाह की याद है, इससे दूर होंगे शैतान आपके भी दिल पे आता है। महसूस करें जरा पीरियड्स के दिन, नमाज तो छूटी जिक्र भी छोड़ दें, दिल पे एक पर्दा नहीं आने लगता, सुस्ती कसलमंदी। ये जो आप रोज भाग भाग के आ रहे हैं ना, एक दिन का ना आपको अगले दिन आना आसान दिख रहा है। अगर एक दिन छुट्टी होती, एक दिन आप आते ना, हम कहते चलो छोड़े रोज कौन आता है, तो आप में से आधे लोग आते हैं। जो काम मुसलसल करें ना वो ज्यादा होता है, आदत भी होती है, शैतान से दूरी भी होती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कभी भी इस जिक्र से दूर ना करे ताकि शैतान हम पर मुसल्लत ना हो जाए। अब क्या नबी तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों और सरी गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह रास्त दिखाओगे। अब तो हमें इनको सजा देनी है, ख्वाह हम तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आंखों से इनका वो अंजाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया। हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है, तुम बहरहाल इस किताब को मजबूती से थामे रखो जो वही के जरिए तुम्हारे पास भेजी गई है, यकीनन तुम सीधे रास्ते पे हो। आप देखिएगा जब कुरान का आखिरी हिस्सा शुरू होता है ना, तो इस किस्म की आयतें अब आगे बहुत आएंगी कि इस किताब को नहीं छोड़ना। आज शायद 3 दफा हमने इस मौजू पे बात की है हल्की फुल्की। तो इस किताब को छोड़ना खुद पे शैतान को मुसल्लत करना है। وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, हकीकत यह है कि यह किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है जी, शर्फ जिसको मिल जाए। और इस आयत को मैं कैसे इंजॉय करती हूँ, कभी वीडियोस में या तरावी की रिकॉर्डिंग सुनते हुए वीडियो में आप इमाम काबा को हरम में आता तो देखा करें। वो नहीं चाहते प्रोटोकॉल, लेकिन उनकी हिफाजत सिक्योरिटी के लिए आगे पीछे लोग और जो उनको इज्जत दी जाती है। मैं सोचती हूँ आज इमाम काबा को इतनी इज्जत मिल गई इस कुरान से, तो अल्लाह के नबी के लिए ये कितनी बड़ी इज्जत थी। वीडियो भी किसी ने भेजी थी, किसी मुल्क में आए थे ये, तो वो गाड़ी से लेकर निकलने से लेकर उनके वहाँ बैठने बात करने के एक एक कदम उनका वो गिन रहे थे और खुश थे कि आज हमारे पास इमाम काबा आए हैं। ये किताब हर एक को इज्जत देता है, शर्त यह कि हम इसको इज्जत दें, अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे। और अन करीब तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी, यानी अगर ये किताब इज्जत देता है तो इसको लेने के बाद फिर जवाबदेही के लिए भी तैयार रहे। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे इन सब से पूछ देखो, क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कुछ दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे कि उनकी बंदगी की जाए, यानी शिर्क की तो कोई जड़ ही नहीं है दुनिया में। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उनके सल्तनत वालों के पास भेज दिया और उसने जाकर कहा मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब उसने हमारी निशानियाँ उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे, यानी खिलखिला के मुँह खोल खोल के हंसने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी इनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी और हमने इनको अजाब में धर लिया कि वो अपनी रविश से बाज आ जाएं। हर अजाब के मौके पर वो ये कहते ऐ साहिर, मजाक उड़ा रहे हैं, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है इसकी बिना पर हमारे लिए इससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जूं ही कि हम उन पर से अजाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते। एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, अब यहां से इसकी शोबाजी देखिएगा, लोगो क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है? यदा रब्बुकुमुल आला कहने वाला शख्स अपनी बादशाही पे मान कर रहा है, और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही, क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं या ये शख्स जो जलील व हकीर है? नाउज़ुबिल्ला, किसको कह रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को। और अपनी बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता, लुकनत की तरफ इशारा है। क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी अर्दली में ना आया? जाहिर परस्त लोग यही चाहते हैं। अब देखिए सेम मेंटेलिटी है, आज भी यही लोग बात करते हैं, दीनदार को हल्का करो, घटिया करो, उसके साथ पहले से सोच लो कि ये भी नहीं तो ये भी नहीं तो ये भी नहीं, और अगर ज़रा कोई चीज़ दिखे तो फौरन मायूस हो जाओ। फिरौन खुद को बड़ा समझता था ना, उसको मूसा कभी बड़े ना दिखे। याद रखिए हर वो शख्स जो खुद को बड़ा करेगा ना, वो अल्लाह और उसके दीन को हमेशा हल्का समझेगा। इसी का जिक्र आगे, फस्तखफ्फ कौमहु फअताउहु, उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने इसकी इताअत की, दर हकीकत वो थे ही फासिक लोग, आखिरकार फिर जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया। इसको नोट करें, कुछ हरकतें इंसान की अल्लाह को गजबनाक करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, तो हमने इनसे इंतकाम लिया और फिर इनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बात वालों के लिए पेश रहो और नमूना इबरत बना कर रख दिया। डूबने की तरफ इशारा है। मूसा के किस्से के मुख्तसर तस्करे के बाद अब ईसा अलैहिस्सलाम के तस्करे की बात, और जूं ही कि इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने इस पर गुल मचा दिया और कहने लगे कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो, ये मिसाल वो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाए हैं, हकीकत यह है कि ये हैं ही झगड़ालू लोग। इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ न थे कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए इसे अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो ज़मीन में तुम्हारे जानशीन हों, और वो यानी इब्ने मरियम दरअसल क़यामत की एक निशानी है, बस तुम इसमें शक न करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है, ऐसा ना हो कि शैतान तुमको इससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये बात भी तकरार के साथ आ रही है कि शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, पकड़ना है तो इस रास्ते को पकड़ लो। और जब ईसा अलैहिस्सलाम वाज़े निशानियां लेकर आए थे तो उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेकर आया हूँ और इसलिए कि तुम पर बाज़ इन बातों की हकीकत खोल दूँ जिनके बारे में तुम इख्तलाफ कर रहे हो, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। नबियों का अकीदा कितना खूबसूरत है, डर अल्लाह का और तरीका नबी का। अल्लाह आज हमें भी इसी की तौफीक दे। इन्नल्लाहा हुवा रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू, हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, इसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। मगर उसकी साफ तालीम के बावजूद गिरोहों ने आपस में इख्तलाफ किया। सीधी सीधी बातें भी लोगों को समझ नहीं आती, बस तबाही है इन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के अजाब से। क्या ये लोग अब बस इसी चीज के मुंतजिर हैं कि अचानक इन पर क़यामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो? फिर सोच लें क़यामत मरने के बाद क्या होगा। वो दिन जब आएगा तो मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। ये कौन सी दोस्ती है? अलहुब्बु फिल्ला वलबुग्ज़ु फिल्ला। याद रखिए दुनिया में दोस्तियां बहुत वजूहात से होती हैं। बस दफा हम साथ उठते बैठते दीन सीखते हुए ये कहने लग जाते हैं, फलां मेरी अल्लाह के लिए दोस्त है या फलां से मैं अल्लाह के लिए दोस्ती करती हूँ। ये तसव्वुर पूरा नहीं है। अल्लाह के लिए दोस्ती क्या होती है जिसमें कोई उम्मीद ना हो, कोई कुछ दे ना दे, कोई ले ना ले, कोई आपकी तारीफ करे कि तनकीद करे, आप सिर्फ इसलिए उससे प्यार करें कि वो अल्लाह से प्यार करता है। तो अल्लाह के लिए दोस्त कौन है? जो खुद अल्लाह से प्यार करे, हाँ उसके पास बैठ के आपको अल्लाह याद आए, या वो आपका हकीकी दोस्त है जो आपको अल्लाह से जोड़ दे। जरा तसव्वुर में लाइए, कोई ऐसी शख्सियत होगी माजी में भी कोई ना कोई जिसने आपको अल्लाह से जोड़ा, जो आपको किताब से जोड़ता है, जो आपको कायनात पे गौर सिखाता है। अगर जिंदगी में किसी एक दोस्त ने आपकी उंगली पकड़कर आपको किसी ऐसी जगह पे पहुंचा दिया, आप सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं दे सकते, क्योंकि उसने आपके लिए रास्ते हमवार किए। तो हमेशा दीन के नाम पर दोस्तियां करें, लेकिन फिर उसमें कीमतें नहीं, फिर उसमें तजस्सुस नहीं, फिर उसमें बुख्तान नहीं है। अल्लाह के लिए दोस्ती के अंदर दुनिया की कोई चीज़ आती ही नहीं है। इस रोज़ इन लोगों से जो हमारी आयात पर ईमान लाए थे और मती फरमान बनकर रहे थे कहा जाएगा कि मेरे बंदो आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं और न तुम्हें कोई गम लाहिक होगा। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे। दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। इनके आगे सोने के थाल और सागर गर्दिश कराए जाएंगे और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। ये है फन प्लेक्स। दुनिया में तो फन नहीं हो सकता पूरा। इनसे कहा जाएगा तुम अब यहां हमेशा रहोगे, तुम इस जन्नत के वारिस अपने इन आमाल की वजह से हुए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। तो अमल दुनिया में, जजा उधर, क्योंकि दुनिया आखरत की खेती। तुम्हारे लिए यहाँ बकसरत फवाकहे मौजूद हैं यानी फल, जिन्हें तुम खाओगे रहे मुजरमीन तो वो हमेशा जहन्नुम के अजाब में मुब्तला रहेंगे। ला युफत्तरु अन्हुम, कभी इनके अजाब में कमी न होगी और वो इसमें मायूस पड़े होंगे। इन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते रहे। सोचिए, और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वो पुकारेंगे, अब देखिए जहन्नुम में पड़े हुए गल सड़ रहे हैं, अब जहन्नुम के दारोगा को पुकारते हैं, जो मालिक है ना, ये जहन्नुम के दारोगा का नाम है, दारोगा से मुराद गार्डमैन। क्या पुकारेंगे? ए मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। अल्लाह से को हमें मौत दे दे, हम बड़े बेचैन हैं, हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमें मौत दे दे। वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे मगर तुम में से अक्सर को हक ही ना गवार था। असल जंग शैतान की जो है ना, वो हक के साथ है। आप जो मर्जी दीन पेश करें, शैतान कभी रखने नहीं डालेगा। हक के दीन के साथ रखने, शक शुबात और मुश्किलें, आजमाइशें, ताने और इल्जाम, ये जुर्म इतना बड़ा कि अब तुम जहन्नुम में पड़े रहो। सोचिए तो सही, क्या हाल होगा उस वक्त? क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया? अच्छा तो हम भी एक फैसला किए लेते हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी रास की बातें और इनकी सरगोशियां नहीं सुनते? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। इनसे कहो, अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। पाक आसमान और जमीन का फरमा रवा, अर्श का मालिक, इन सारी बातों से जो ये लोग इसकी तरफ मंसूब करते हैं, अच्छा इन्हें बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहाँ तक कि वो अपना वो दिन देख लें जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। यानी अभी इनको मोहलत दो, जो भटकना चाहता है ना, फिर अल्लाह ताला उसको पूरा मौका देते हैं, और भटको, और हो जाओ, और हो जाओ। क्यों? क्या बेक की दफा तुम्हें पकड़ूंगा? वही एक आसमान में भी रब है और जमीन में भी, और वही हकीम व आलीम है, बहुत बाला बरतर, वो जिसके कब्जे में जमीन व आसमान और हर उस चीज की बादशाही है जो जमीन व आसमान के दरमियान पाई जाती है। वाइंदहु इल्मु सा, और वही क़यामत की घड़ी का इल्म रखता है। पहले ही आयत याद कर लें पारे की, क़यामत कब आनी है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, और इसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। इसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो कभी शिफात का इख्तियार नहीं रखते इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे। देखिए आप पढ़ रहे हैं बार बार शिर्क, तौहीद, सिफारिश, ये मौजूद छेड़े जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि गलत अकीदा गलत बीज है, गलत अकीदे से गलत अमल आएगा। जैसे बीज खराब होगा ना, फसल पूरी खराब होगी। और शिर्क और बिदत, ये दो बहुत बड़ी जड़ी बूटियां हैं जो अमलों की खेती को जाया कर देती हैं। बिदात दीन का रुख बदल देती हैं, दीन से संजीदगी निकल जाती है। लोगों को जब थोड़ी देर बैठकर अच्छे अच्छे खाने खाने को मिले और वो इस खुशी में घर जाएं कि भाई आज हम बहुत बड़ी नेकी करें, तो वो इस तरह दो ढाई तीन घंटे नहीं बैठ सकते कि एक पूरा पारा हम सुने। और बिदात के साथ दीन से रेवोल्यूशन का तस्वुर खत्म हो जाता है। हर वो महफिल जहां से आप उठें और सोचें सीखा क्या, ईमान में कितनी दफा कचोके लगे, कितनी दफा तनकीद हुई, अगर नहीं हुआ तो मान लीजिए वो बिदत है। सच्ची दीन की महफिल वो होती है जहां बंदे को अपने ईमान में हरकत महसूस होती है, कभी अपने आमाल को याद करके रोना आता है और कभी खुशी होती है। असल बात यह है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिरी आयतें, और अगर तुम इनसे पूछो इन्हें किसने पैदा किया है, वो कहेंगे अल्लाह ने, फिर कहाँ से ये धोखा खा रहे हैं। कसम है रसूल के इस कौल की, कह रब ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। अब देखिए रसूल भी बेबस हो जाते थे, एक वक्त आता था अपनी उम्मतों के आगे, अच्छा है नबी इनसे दरगुजर करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, अन करीब इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या मालूम होगा आपको पता, कौन सच्चा था कौन झूठा और किसका इंजाम अच्छा और किसका बुरा। तिलावत सुनते हैं आयत 85 से गौर व फिक्र करते हुए।
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.